जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिताई गौरांगिताई श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद्भागवतम के नवम स्कंद इनका अध्याय 19वां श्लोक शीर्षक है राजा ययाति को मुक्ति लाभ। श्लोक संख्या नंबर 13। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। या पृथ्वीयम् ब्रीहि यवन यवम् हिरण्यम् पशुवा प्रिया न दुष्यन्ति मनः प्रीतिम् पुंस कामहतय ते यत् पृथ्वीयां वीर्यावम् यत् पृथ्वीयां वीर्यावम् हिरण्यं पशुवस्त्रिया हिरण्यं पशुवस्त्रिया न दुष्यन्ति मना प्रीतिम् न दुष्यन्ति मना प्रीतिम् पुंस कामहतस्य ते पुंस कामहतस्य ते यत् पृथ्वीयां विरिह्यम् हिरण्यं पशुवस्त्रिया न दुष्यन्ति मना प्रीतिम् पुंस कामहतस्य ते यत् पृथ्वीयां विरिह्यम् हिरण्यं पशुवस्त्रिया न दुष्यन्ति मना प्रीतिम् पुंस कामहतस्य ते माता जी
yeah,
अनुवाद शब्दार्थ इस प्रकार है, यह जो भी पृथ्वीयां इस संसार के भीतर ब्रीही अन्न धान यवम यो जो हिरण्यम सोना पशव पशु स्त्रिया स्त्रिया पत्निया न धुयंती नहीं देती है मना प्रीतिम मन की तुष्टि पुंसः पुरुष को कामहतस्य विश्वास विश्वासनाओं के विषय वासनाओं के शिकार होने के कारण ते वे अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, जिसमें धान जो अन्य अनाज सोना पशु तथा स्त्रियां संपत्ति या सल ये सारी चीजें उसे किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिकवादी का लक्ष्य अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है, किंतु इस आर्थिक विकास का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं करता तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता, भले ही उसे विश्व पर भले ही उसे विश्व भर की संपत्ति क्यों ना मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास दिखता है तो भी लोग अत्यधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संघर्षित है। मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि प्रत्येक जीव परम पुरुष का अंश है, किंतु काम इच्छाओं के कारण वह अपनी आर्थिक दशा को तथाकथित सुधारने के लिए निरंतर संघर्षशील रहते हैं। तुष्ट मन प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं के हृदय रोग को त्यागना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदय रोग मोत किरणे धीरा। भागवत के दसम स्कंद के 33वें अध्याय में इसका वर्णन है। कृष्ण भावना भावित होने पर हृदय रोग जाता है, अन्यथा काम इच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं होगी। ओम ज्ञान किमिरानंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददापि स्वपदान्तकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांश्च श्रीरूपं सांग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण कना सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभान सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पत्र ब्रष्ट कृपा सिंधु भयवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इन श्लोकों में जहाँ पर जयाति महाराज अब बता रहे हैं कि वास्तविक विषय भोग का कितनी दुर्गति होती है, तो जो कोई विषय भोग में लगता है तो उनका क्या परिणाम होता है, और इस प्रकार व्यक्त करते हुए विरक्ति के विषय में बता रहे हैं कि कैसे हमें इस भौतिक संसार से विरक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो एक होता है विषय, एक होता है राग, दूसरा होता है द्वेष। तो यहां पर ययाति महाराज के हृदय में द्वेष भावना नहीं दिख रहा है। तो कभी कभी ये द्वेष को भी लोग गलत दृष्टि से ले लेते हैं। तो वो जो द्वेष करना भी, वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक पहले वाले श्लोक में जहां पर ययाति महाराज कहते हैं हे सुंदर भ्रुगोटी वाली, तो उनके जो ब्रोच जो भ्रुगुटी जो थे उनको देखते हुए यहाँ पर ययाति महाराज उनकी प्रशंसा करते हुए ये बता रहे कि कैसे विषय भोग कितना दुर्गति या दुष्परिणाम को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर यह दिखाई पड़ता है कि ययाति महाराज के अंदर द्वेष नहीं था। तो इस प्रकार आगे अब इन श्लोकों में बताते हैं कि वो जो राग और द्वेष ये व्यक्ति के हृदय में जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति अपने विरक्ति के यानी कि जीवन के मार्ग को प्राप्त नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा एक रोग है जो कि जीवों के हृदय में धस चुका है। यहां पर इन श्लोकों में जहां पर बताते हैं यत पृथ्वीयां विरक यावन हिरण्यम पशव स्त्रिया, चाहे संसार का समस्त वस्तु उसके हाथ में दे दिया जाए, उसके घर बार बैंक बैलेंस अच्छी पत्नी अच्छे बच्चे सभी कुछ उनको प्राप्त क्यों ना हो, सभी तरह से उनको ये सब मिलने के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त होगा। मन प्रीतिम, उनके मन के अंदर कोई संतुष्टि नाम की चीज प्रवेश नहीं करेगी तो वो हमेशा संतुष्टि रहेगा। जैसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में जहां पर वर्णन आता है सैथम निर्जित काकुप एक रात विषयान प्रियान यथा तो भोजो भुंजान न तृप्तिया तितेंद्रिया, हिरण्य कश्यपु एकमात्र मालिक थे पूरे त्रिभुवन के, चारों दिशाओं पर उनकी सत्ता चलती थी, एक रात विषयान प्रिया एकमात्र वही राजा थे और बाकी सब उनके दास थे नौकर थे, मगर उनकी परिस्थिति क्या है न तृप्तिया, उनकी ऐसी अवस्था हुई कि उनके हृदय में कोई शांति नहीं थी, यहां तक कि अभी भी आकांक्षा थी कि अपने हृदय की इच्छा और पूरी करें। तो जब ये काम के इच्छाओं से जब शिकार हो जाता है व्यक्ति, तो व्यक्ति को कितने भरपूर मात्राओं में विषय वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी वो वस्तु से वो संतुष्ट नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति था बड़ा दुखी बैठा था, तो दूसरा व्यक्ति ने उसको पूछा अरे मित्र आप इतने दुखी क्यों हो, तो ये कहने लगा, तीन हफ्ते पहले मेरी नानी गुजर गई और उन्होंने मेरे लिए 50 लाख देकर गई। और फिर दूसरे हफ्ते में मेरे नाना गुजर गए, बोला अच्छा, और वो 75 लाख छोड़ कर गया। बोला अच्छा, तो अब क्या है? बोलने लगे कि इस हफ्ते कोई मरा ही नहीं है। तो वो जो हृदय में, जब व्यक्ति के हृदय में जब विषय की जब चिंता जब बढ़ती है तो इतना बढ़ा देती है कि वो कितना भी उसे प्राप्त हो वो उसे संतुष्ट नहीं रहता। तो ये जो मन के अंदर का जो रोग है, ये रोग इस प्रकार जीवों के अंदर इतनी बुरी तरह से धस चुका है। चाणक्य पंडित बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे मन की अवस्था क्या है। तो बताते हैं कि हमारा मन उस प्रकार है, मर्कटस्य सुरापानम तत्र वृक्षित दंशनम तद्भूत संचारम यदवा तद्वा भवति। तो कहते हैं मर्कटस्य सुरापानम, तो हमारे जो हृदय की अवस्था के साथ वो तुलना करते हुए कहते कि हमारा मन किस प्रकार है, मर्कटस्य, यानी कि वो बंदर के समान है। मन बंदर क्या करता, हमेशा कूदता रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। मर्कटस्य सुरापान, अब वही बंदर जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है, वैसा बंदर अगर गलती से अगर मदिरा पी लिया, सुरापानम, अगर उसने अगर मदिरा पी लिया तो पहले से तो वे उछल रहा था, अब यह पीने के बाद तो इतना जोर से उछलेगा कि पेड़ की सीमा को भी देगा। और इतना ही नहीं, तो आगे कहते तद वृक्ष दंशनम, और उनके साथ में उनको बिच्छू ने डंक मार लिया। अब बिच्छू अगर हमारे उंगली में अगर डंक मारा तो इतना व्यक्ति छटपटाता है कि इतना दर्द असहनीय हो जाता है कि उसे ऐसे लगता है कि मैं अपना हाथ काट दूं। और वैसे असहनीय जब दर्द जैसा बिच्छू अगर बंदर को डस लिया तो बंदर की क्या अवस्था होगी। अब इतना ही नहीं, साथ में आगे वर्णन कर कहते हैं कि तद्भूत संचारम, उसके साथ में उसके अंदर भूत घुस गया है। अब किसी के अंदर जब भूत घुसता है तो व्यक्ति कितना छटपटाता है, कितना उड़ी मारता है, और तो जो लोग देखे रहेंगे उनको अनुभव होगा। तो वैसा भूत अगर बंदर के अंदर घुस गया तो पहला तो कहते मन हमारा बंदर की तरह है, मर्कटस्य, और उसके साथ में सुरापानम, साथ में दारू भी पी लिया है, और उसके साथ में बिच्छू ने भी डंक मार लिया है, और उसके साथ तद्भूत संचार यदवा तद्वा भविष्यति, ऐसी अवस्था में उसके क्या भविष्य रहेगा, कोई गति नहीं है। तो यहां पर चाणक्य पंडित बताते कि ये इस प्रकार हमारा मन है। तो वैसे मन का वास्तविक जीवन का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ऐसे पीड़ित मन से अर्जुन ने भी यह प्रश्न किया कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत्रिणम। वो जो अर्जुन जो कि स्वर्ग गए थे और स्वर्ग में उर्वशी ने जब अपना प्रस्ताव दिया तो उन्होंने उर्वशी के प्रस्ताव को तिरस्कृत किया, वैसे अर्जुन यहां पर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो उसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यास योगे न कौनते वैराग्य से गृहते। तो कहते हैं कि मन को वशीभूत कर सकते हैं, मन के बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कैसे, दो तरह से, एक तो अभ्यास योगे न, एक तो कुछ करना है, और दूसरा वैराग्य चक्रिय है। दूसरा कुछ नहीं करना है, कुछ करना और कुछ नहीं करना। तो जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर है वो करना है, और जो हमारे लिए प्रेष करे वो नहीं करना है। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ की। तो वैसे जो वस्तु जो मन को बड़ा मिठास देता है वो वास्तविक में प्रेयस है, और वो वस्तु से व्यक्ति को दूर रहना है, यानी कि अपने मन को उस वस्तु से दूर रखना चाहिए। और इस प्रकार जो हमें हमारे लिए जो अच्छाई है, जो हमें जो हमारे जीवन के लिए या हमारे भविष्य के लिए जो अच्छी वस्तु है उसे व्यक्ति को करना है। तो यह है डूज एंड डोंट, तो कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो जब हम अपने मन को अपने प्रिय वस्तुओं से दूर रखते हैं तब मन बड़ा बलवान बनता है। तो इसलिए भगवान हमसे डिमांड क्या करते, जो हमारे लिए प्रिय वस्तु है वो डिमांड करते कि जो तुम्हारे लिए प्रिय है वो मुझे दो। तो इसलिए किसी कवि ने कहा है कि लोगों के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है, धन। और धन इतना प्रिय वस्तु है इसलिए दर्जी ने जब इतना सोच समझ कर लोगों का पॉकेट बनाया कि हृदय के पास रखा है, क्योंकि धन एकदम हृदय से सटा के रहेगा। और उसी में सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छा इसमें टिप्पणी देते हैं, तो भगवान भी बड़े चतुर है और कहते हैं कि प्रणाम करना है तो बाएं तरफ मेरे तरफ रख के प्रणाम करना है। तो वो जो अंदर का है वो भी मुझे मिलेगा। तो वास्तविकता भगवान को इस संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, केवल ये लेना देना जो हमें प्रिय लगता है वो वस्तु मांग रहे हैं। इसलिए अर्जुन के लिए सारे उनके स्वजन लोग अपने प्रिय थे, पितृनता पितामह आचार्य मातुलान भातरान पुत्र पौत्रान सखिन तथा, ये सब उनके प्रिय थे। लेकिन कृष्ण ने क्या डिमांड किया, ये सब चाहिए मुझे। तो अर्जुन वहां पर रथ पर बैठकर रो दिए कि ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है। तो कभी कभी जीव साधक भक्त जो होते हैं उनसे जब कृष्ण जब कुछ या गुरु के द्वारा कुछ डिमांड भी किया जाता है तो बेचारा हताश हो जाता है, ये कैसे संभव है। जिस प्रकार अर्जुन वहां पर रथ पर रो दिए, लेकिन अर्जुन ने अंत में क्या निर्णय लिया, करिष्ये वचनम तवा, जो आप कहोगे मैं करूंगा, भले मेरे लिए प्रिय क्यों ना हो। तो जब हम अपने प्रिय का जब बलिदान करते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार जब मन को जब अपने प्रिय वस्तुओं से दूर करते हैं तब मन जो है बलवान बनता है। आपको पता होगा जैसे सर्कस में जो सर्कस करने वाला जो व्यक्ति जो होता है वो बड़े बड़े शेर को अपने वशीभूत कर देता है। अब वो जो जंगल का राजा वो शेर को, उस शेर के सामने ये सर्कस वाला एक छड़ी मारता है तो शेर घबरा जाता है। तो ऐसे संभव है, क्योंकि इसे उस मंच पे लाने के पहले उस शेर को कई दिनों तक भूखा रखता है, और कई दिनों तक भूखा रखने के कारण वो शेर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। और उस कारण से वो शेर के सामने जब एक छड़ी भी मारता है तो घबरा जाता है, उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई। ठीक इसी तरह वो जो मन, अभी ये शरीर का राजा है, बुद्धि का भी राजा है, तो इसलिए वैसे मन की शक्ति के या वैसे मन के बल को अगर खत्म करना है तो उनको पास में रखना चाहिए, उन्हें हमेशा, या दूसरे शब्द में कहा जाए एकादशी, जीवन भर के लिए एकादशी। जब उसको हम उपवास में रखेंगे तब जाकर मन की जो शक्ति है वो पूरी तरह शिथिल हो जाएगी, और वो मन कमजोर हो जाएगा, तब जाकर बुद्धि से आज्ञा का पालन करें, बुद्धि की आज्ञा का पालन करने के लिए मन सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए मन को जो लुभावना जो लगता है उस वस्तु से मन को दूर रखना है। इसलिए यहां पर कहा गया वैराग्य से कथेत, वैराग्य से गृहते। ये वैराग्य को व्यक्ति कुछ व्यक्ति जब इस विषय वस्तुओं से मन को दूर रखता है तब जाकर मन बलशाली बनता है आध्यात्मिक कार्य में। ये इतना आसान नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जब इनका जब पहला मुलाकात हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु से, तब रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा घर छोड़कर भाग जाते थे। तो रोजाना होता था, क्योंकि उन्हें बाकी संसार से किसी प्रकार का रस हट चुका था, क्योंकि महाप्रभु का रस मिल चुका था। तो उनके माता पिता बड़े हैरान हो गए कि क्या करें। तो उनके पिता ने रघुनाथ दास गोस्वामी का एक सुंदर अप्सरा सुशील जैसी कन्या के साथ उनका विवाह करा दिया। और इतने रहीस थे, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर बार छोड़कर भाग जाते थे। उनके पास कई बॉडीगार्ड भी थे, फिर भी भाग जाते थे। तब उनकी माँ उनके पिता को कहने लगे कि हमारा लड़का इतना क्यों भाग जाता है, कुछ करना चाहिए। तब उनके पिता कहने लगे, अरे भाग्यवती, आप समझ नहीं रही हो, इनके सामने सुंदर सुशील जैसी कन्या, इनकी धर्म पत्नी और इतने सारे धन ऐश्वर्य, ये दो रस्सी इसे बांध नहीं सकती, तो अभी कौन सी रस्सी बची है बांधने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन में ऐसे विषयों को परित्याग करने के लिए बड़े सक्षम थे। तो इस तरह यहां पर जब मन को जब विषय वस्तु जो प्रिय जो लगने वाला जो विषय वस्तुओं से मन को जब दूर रखते हैं, तब मन का बलशाली बनता है। जैसे वो प्रसंग में जहां पर वामन देव के प्रसंग में जहां पर वर्णन आता है कि बलि महाराज सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन शुक्राचार्य वहां पर मना कर रहे थे। तो शुक्राचार्य की तुलना की गई है हमारे दुर्बल मन के साथ, और बलि महाराज की तुलना की गई है साधक भक्त के साथ। तो जब साधक भक्त जब भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कुछ कार्य करने के लिए जो श्रेष्ठ कर है वो कार्य करने के लिए जब अपने कदम को बढ़ाता है, तो मन जो है वो हमेशा उसे रुकावट देता है। मन उसे मना करता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो हमेशा मन जो है उसे आध्यात्मिक जीवन के लिए रुकावट देने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि मन के अंदर उस विषय वासनाओं का रोग लग चुका है। इसलिए ऐसे विषय वासनाओं के रोग से बचने के लिए क्या उपाय है, तो उसके उत्तर में बहुत अच्छी तरह वामन देव अपनी शिक्षा में वर्णन करते हैं। तो वामन देव शिक्षा में जहां की अठम स्कंद में यह वर्णन आता है कि जब बलि महाराज वामन देव को सभी कुछ वस्तुएं उसे प्रदान कर रहे थे, वो कह रहे थे गाम कांचनम गुणवत्त धाम मृष्टम तथा न पेयम उत्वा विप्र कन्याम, वो कह रहे थे क्या आपको चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने सोने चाहिए, क्या मैं आपको एक पूरा गांव दे दूं, क्या आप ब्रह्मचारी हो तो क्या एक सुंदर कन्या से विवाह करा दूं, क्या आपको 56 भोग खिला दूं, किस चीज की आवश्यकता है। अब वामन देव के सामने इतने सारे प्रस्ताव दिए गए, फिर भी वामन देव ने क्या कहा, केवल मुझे 3 पग भूमि चाहिए, पादानी त्रीणि दैतेन्द्रिय, मुझे 3 पग भूमि से मैं संतुष्ट हूं। तो बलि महाराज कहने लगे, बालो बालिश्यामति, बातें तो पंडित जैसे कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब मांगने का जब बात आया तो दिख रहा है कि एकदम बालक जैसे, तुम्हें क्या अपना स्वार्थ नहीं पता है कि वास्तविक तुम्हारा स्वार्थ कहाँ छुपा हुआ है। तब वामन देव बहुत सुंदर अच्छी शिक्षा देते हैं, वो कहते हैं यावन तो विषयान प्रेषा त्रिलोक्य अजितेंद्रिया न सक्नुवंती ते स्थरे प्रतिपूर्ये तिम नृप। कहते हैं कि यावन तो विषयान प्रेष्ठा त्रिलोकीय अजितेंद्रिया, तीनों लोकों का अगर किसी को विषय वस्तु भी प्राप्त क्यों ना हो, न सक्नुवंती, वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होगा, हमेशा वह असंतुष्ट ही रहेगा। प्रतिपूर्यतिम नृपा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वामन देव क्या उपाय बताते हैं हृदय के रोग को हटाने का, सबसे पहला उपाय देते हैं संतुष्टि। जब कोई संतुष्टि नामक वस्तु अपने जीवन में धारण कर लेता है तो सारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो कहते हैं पुंसाम यम स्मृतेर हेतु असंतोष्टोर कामयो यत्रिच्छियो पपन्नेना संतोष्टो मुक्तय स्मृता। तो कोई अगर पुंसाम यत स्मृतेर हेतु, कोई अगर अपने जीवन में संतुष्टो मुक्तय स्मृता, अपने हृदय में संतुष्टि नामक वस्तुओं को अपने हृदय में धारण करता है, तो ये जितनी भी ये रोग है जो असंतुष्ट नामक वस्तु है, ये सब अपने आप निकल जाती है। जैसे पैरों में जब जूते डाल दिए जाते हैं तो पैरों का जो रबर का जो जूता है वो पैरों को तरह तरह के सड़कों के कंकड़ पत्थर से उन्हें रक्षा प्रदान करता है। तो पैरों में जब रबर के जूते डालते हैं तो पैर सुरक्षित रहता है। अब दूसरा मार्ग क्या है, एक है पैरों में जूते डालना, दूसरा मार्ग है कि पूरे रास्ते भर में रबर का शीट बिछाना। तो दोनों में से कौन सा बुद्धिमानी है, पैरों में जूते डालना। तो जो व्यक्ति अपने विषयों रूप से संतुष्ट होने का प्रयास करता है तो उनकी परिस्थिति क्या है, उस प्रकार है जो व्यक्ति पूरे रास्ते भर में रबर का शीट बिछा रहा है और अपने पैरों की रक्षा कर रहा है। वो असंभव है, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में ही संतुष्टि नामक वस्तुओं को धारण कर लिया है तब तो फिर सारी परेशानी खत्म। तो वामन देव यहां पर इस हृदय रोग को हटाने के लिए बता रहे कि संतुष्ट स्मृतेर हेतु मुक्तया, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी कि वो तरह तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाता है इस संतुष्टि नामक वस्तुओं को हृदय में धारण करने से। दूसरा उपाय कपिल देव मुनि बताते हैं कि हृदय के रोग को हटाने के लिए क्या उपाय है, तो बताते हैं कि भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यस्य नैश्वर्यम अशुभम दत्ते स्वमहिम्नि स्थितस्य च। तो बताते हैं कि अपने हृदय को जो विषयों से या रोगों से अगर बचना है तो क्या करना है, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच, हर विषय वस्तुओं के अंदर दोष है इस रूप में देखना चाहिए। हर विषय वस्तु में दोष के रूप में विषय वस्तुओं को देखते हैं तब वो व्यक्ति समहिम, वो फिर महात्मा के रूप में माना जाता है, तब उसके यश आगे जाकर बढ़ता है। जो व्यक्ति हर विषय वस्तुओं में दोष को देखता है, एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति एक न्यूज एडिटर आकर पूछने लगी कि प्रभुपाद स्वामी जी, ये जो विश्व कृष्ण इतने सुंदर है तो ये विश्व इतना भयंकर क्यों। तो प्रभुपाद कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा ही सुंदर है मगर तुम्हारा मल इतना खराब क्यों। तो उनकी बोलती बंद हो गई, तो उसी में उनको उत्तर मिल गया। तो ये जो भौतिक जगत में केवल दोष है, इस दृष्टि से देखना, ये कपिल मुनि बताते हैं कि कैसे हर वस्तुओं में दोष देखना है। जैसे कि मान लो कि किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और वो स्वीट स्टॉल गया और स्वीट स्टॉल में पूछा एक रसगुल्ला कैसा, तो बोला 1 करोड़ रुपया। अब वो उसका प्राइस भरना ही इतना भयंकर है कि वो रसगुल्ला खाने की इच्छा खत्म हो गई। नहीं नहीं मैं ठीक हूं ऐसे ही। तो जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तुओं के अंदर जब विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब प्रयास करता है, तो उसका जुर्माना के विषय में भी सोचना चाहिए। तो हर वस्तुओं को देखने की अलग अलग दृष्टि होती है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, एक एक पदार्थ स्तु त्रिविध भौति विक्षित पुम पुम पुनः कामी मांस योगी भी कामी भी स्व भी। तो तीन लोगों के विषय में बताया, ये तीन लोग अलग अलग दृष्टि से विषय वस्तुओं को देखते हैं। तो क्या कहते हैं, एक एक पदार्थ स्तु पुनः, योगी जब किसी कन्या को जब सड़क से जाते हुए जब देखता है, तो योगी किस दृष्टि से देखता है कि ये तो वही है, मल मूत्र से बना हुआ वही शरीर है पुनः। और कामी भी किस रूप से देखता है कि ये मेरा विषय वस्तु है। स्व भी यानी कि कुत्ता किस दृष्टि से देखता है, हाँ यहां पर मेरा नाश्ता पानी जा रहा है, तो वो केवल भोजन के रूप में देखता है। हर व्यक्ति के अलग अलग दृष्टि होते हैं। जैसे कि कोई अगर सुंदर एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस को अगर युवक लड़का देखता है तो केवल उनके सुंदरता को देखेगा, लेकिन उसी को अगर एक मच्छर ने देखा तो मच्छर किस दृष्टि से देखेगा, हियर इज माई ब्लड बैंक, तो वो केवल उसी दृष्टि से देखेगा। इसलिए जब व्यक्ति हर वस्तुओं के अंदर दोष को देखता है, तो ये दूसरा मार्ग है हमारे हृदय के रोग को हटाने का। अब तीसरा मार्ग जो कि हृदय के रोग को हटाने का यह है, वो है दान देना या त्याग देना उस वस्तुओं को। जैसे उदाहरण के रूप में आता है सत्राजीत के पास एक ऐसा मणि था, सामंतक मणि, और ये सामंतक मणि इसके लिए इतना प्रिय था क्योंकि वो रोज सामंतक मणि हर दिन 80 पाउंड गोल्ड उत्पन्न करता, स्वर्ण उत्पन्न करता था, और जो कोई धारण करेगा वो 3 क्लेशों से छूट जाता था। तो वैसे इनके पास वैसी शक्ति थी। और एक समय सामंतक मणि को डालकर जब सत्राजीत गए थे कृष्ण को द्वारका में मिलने के लिए, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्वयं सूर्यदेव मिलने आया है। तब उस समय भगवान कृष्ण ने उनसे सामंतक मणि मांगा, लेकिन सत्राजीत ने मना कर दिया। और जैसे ही मना किया तो अब हुआ क्या, उसके दुष्परिणाम शुरू हो गए। उन्होंने अपने भाई प्रसन्ना को दिया। प्रसन्ना एक दिन जंगल में डालकर जब जा रहा था, तो एक शेर ने शिकार किया और वो ले लिए। और तब उस समय जामवन आए, उनके साथ युद्ध किया। जामवन ने उस मणि को लिया, अपने पुत्र को दे दिया, और ये खबर द्वारिका में खबर फैल गया कि भगवान कृष्ण ने सामंतक मणि चोरी किया। भगवान कृष्ण गए, जामवन के साथ युद्ध किए, जामवन को पता लगा कि ये स्वयं भगवान रामचंद्र जी है, और उन्होंने अपने जामवती को दिया उनके पत्नी के रूप में, और साथ में सामंतक मणि भी दिया, और उस सामंतक मणि को वापस सत्राजी को दिए। और जैसे ही ये खबर अक्रूर जी को पता लगा, तो अक्रूर जी ने एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे कहा जाता है, सुपारी दिया और कहा कि इसे मार दो। और वो सीधे गए और उन्होंने जाकर सत्राजीत का वध किया और सामंतक मणि लिया। और वो मणि लेकर जब भाग रहे थे, तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस असुर का भी वध किया और उस मणि को अक्रूर जी के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर
एक सामंतक मणि के पीछे कितने लोगों की हत्या हो गई, मुख्य कारण क्या था? तो कहते सयाचितो मणि स्वापि यत्तु उदारेषु सौरिणा नैवार्थ कामुक प्राधात याचना भंगम अतर्कयन। क्योंकि उन्होंने भगवान की याचनाओं को भंग कर दिया। भगवान ने याचना किया कि आप वो मणि को मुझे दे दो, लेकिन इन्होंने क्या किया, याचना तर्कन अभंग है, तो उन्होंने भगवान की याचना को भंग करने के कारण उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उन्हें केवल दुख प्राप्त हुआ। तो जब वस्तुओं को जब त्याग देते तो व्यक्ति बड़े शांत चित्त हो जाते, उनके अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। जैसे एक बार एक व्यक्ति जब बाहर जा रहा था कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने गाय को पड़ोसियों को देकर संभालने के लिए चला जाऊं। तो उन्होंने अपने गाय को पड़ोसियों को दे दिया और पड़ोसियों को कहा कि आप इस गाय की रखवाली करना, मैं कई महीनों के बाद आऊंगा। तो उन कुछ गाय रोज दूध देती थी, मगर ये क्या करते थे, ये घर का मालिक उस गाय के दूध को लेकर रोज कुत्ते को पिलाता था, तो रोज इसी प्रकार पिलाता था। इसकी पत्नी बड़ी क्रोधित हो जाती थी। इसकी पत्नी कहती थी, कैसे तुम व्यक्ति हो, वो गाय का दूध कुत्ते को पिला रहे, हमें पीना चाहिए, हमें पिलाना चाहिए, तुम वो कुत्ते को पिला रहे हो। बोले नहीं नहीं यही उचित है। तो हुआ क्या, कुछ महीने के बाद वही गाय का मालिक आया और कहा कि मुझे गाय चाहिए, तो उन्होंने उसको गाय दे दिया। और जब गाय लेकर जब जा रहा था तो कुत्ता भौंकने लगा भौं भौं, और वो रोने लग गया कुत्ता। तो यहां पर ये मकान मालिक कहने लगा कि ये जो दूध ये कुत्ता पी रहा था इसलिए ये रो रहा है, अगर तुम पीते तो इसके बदले तुम्हारा नंबर लगता था। तो क्योंकि उस गाय के दूध को पीकर कुत्ता आसक्त हो गया था, और आसक्त होने के कारण वो जब छूटा तो रोने लग गया। तो जब विषयों को जब व्यक्ति त्यागता है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरा उपाय है उसे त्याग देना, मगर लोग त्याग नहीं पाते। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था, तो बड़ा रईस व्यक्ति था, और वो आगे कहने लगे कि स्वामी जी मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, बहुत सारे मेरे कारोबार है, एक जयपुर में एक फैक्ट्री है, दूसरा इधर फैक्ट्री है, बहुत जगह फ्री है, मैं क्या करूँ। तो प्रभुपाद कहने लगे निश्चिंत होकर वो सब हमें दे दो, तुम निश्चिंत पूर्वक सो जाओ। तो सोचने लग गया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा उत्तर, तो उसके जाने लग गया। तो प्रभुपाद कहने लगे अरे जा रहे हो, अपना एड्रेस तो देखे जाओ। बोले रे फिर कभी आओगे। तो वो तो चले गए। तो प्रभुपाद कहने लगे कि देखिए लोग कितने कितने बुरी अवस्था में, कि कितने अंधविश्वास में, इन लोगों को ये नहीं पता कि कुछ दे देने से व्यक्ति को शांति मिलता है, सब पकड़ के रखने में अशांति हो जाती है, सारा शांति भंग हो जाता है। तो ये है तीसरा मार्ग जो कि हृदय के रोग को हटाने का। अब चौथा मार्ग है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने काम के शिकार से व्यक्ति बच सकता है। जैसे उदाहरण आता है दशम स्कंद में, जहां पर प्रलंबासुर आए थे बलराम जी को अपने कंधे में उठाकर लेकर जा रहे थे, तो लेकर जाते हुए वो आकाश वायुमंडल में लेकर उड़ गए। और तब उसी समय बलराम जी ने देखा कि ये खेल नहीं खेल रहा है, ये कुछ अपना ही खेल खेल रहा है, तो उन्होंने निकाला गदा और सीधे उनके मस्तक पर दे दिया और वो धड़ाम करके गिर पड़ा। तो वैसे यहां पर प्रलंबासुर की तुलना की गई है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो है हमारे सूक्ष्म और स्थूल काम के साथ तुलना किया है। लेकिन उसका वध कब हुआ, जब बलराम जी ने भी अपने वजन को बढ़ा दिया, उस समय बलराम जी ने अपने वजन को बढ़ा दिया, जिस कारण से प्रलंबासुर नीचे नीचे आने लग गया। तो जब गुरु यानी कि भारी, भारी किस में? वजन में नहीं, ज्ञान में। तो जब ज्ञान की भारी वाणी को जब शिष्य लेते हैं तो प्रलंबासुर रूपी जो असुर जो हृदय में है उसका फिर अंततः अथवा वध होता है। तो ये चौथा मार्ग है। जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रवेश करता है तो विषयों के प्रति जो रमने की जो भावना खत्म हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि अगर कोई टीवी देख रहा है और टीवी में बहुत सारे चलचित्र चल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, और उसी में रम गया है, रिहात्म है और बड़ा ही पूरी तरह आवेश हो चुका है, और अचानक उसने देखा कि उसी टीवी के ऊपर एक कोबरा नाग है। अब वो कोबरा नाग टीवी नहीं देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है और तुम उसको देख रहे हो, तो अब क्या होगा? टीवी देखने का पूरा रस खत्म हो गया, क्योंकि पता लग गया कोबरा नाग ऊपर है। तो वैसा जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में विषयों में जब पूरी तरह रम जाता है तो उसे अगर बचना है तो केवल यही समझना होगा ज्ञान दृष्टि से कि मृत्यु रूपी कोबरा नाक मेरे सर पे मंडरा रहा है, तब व्यक्ति हृदय के रोग से बच सकता है। तो ऐसे यहां पर ये कुछ उपाय हैं जो कि व्यक्ति अपने हृदय के रोग से बचने का मार्ग बताया। और यहीं पर ही ययाति महाराज, जो कि ययाति महाराज इस प्रकार कह रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अपने रोग का, हृदय रूपी रोग का जब शिकार हो जाता है तो भौतिक संसार का सारे विषय वस्तु भी क्यों ना प्राप्त हो फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। हाँ, सभी वस्तु भगवान की संपत्ति है तो हर वस्तुओं के अंदर भगवान की संपत्ति के अंदर दोष कैसे देख सकते हैं? हाँ सही बात है, हर वस्तु भगवान से मिली हुई है तो भगवान जिस प्रकार सुंदर है तो उनके वस्तु भी सुंदर ही है। लेकिन दोष कहाँ पर देखना है? दोष देखने का दृष्टि अलग स्थान पे होना चाहिए। जैसे कोई अगर विषय वस्तुओं को अपने लिए उपयोग करता है तब उसमें दोष देखना चाहिए, लेकिन जब वो वस्तु जब भगवान से जुड़ी है तो उसमें दोष नहीं देखा जाता है, तो उसकी स्तुति गाई जाती है। तो जितनी भी वस्तु है, जो जो बड़े बड़े व्यक्ति जैसे हिमालय इत्यादि, ये जो भी कुछ है, ये समुन्दर इत्यादि, ये भगवान की विभूति के रूप में दर्शन किया जाता है, तो उसमें दोष नहीं देखा जाता है। दोष किसमें देखा जाता है? दोष केवल जब व्यक्ति जब स्वयं के लिए उपयोग करता है तब उसमें दोष देखा जाता है। और यहां पर दोष इसलिए देखने को कह रहे हैं, तो ये इस प्रकार व्यक्ति जिएंगे तो व्यक्ति इस रोग से बच सकते हैं। जैसे कि एक पंडित जी है, उस पंडित जी के पास एक शिष्य आया और कहने लगे कि भौतिक संसार में व्यावहारिक कैसे रहना चाहिए इसके में कुछ शिक्षा दी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ बैठे रहो, मेरे आचरण को ध्यान पूर्वक देखते रहना, वैसे ही तुम्हें जीना है। तो बोला ठीक है। तो कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आया, पूरा दान वगैरह लेकर, फल था, अगरबत्ती और कुछ पैसे वगैरह सब प्लेट भर के आया और उन्होंने लाके रखा और उसके ऊपर कुछ चादर भी था। तो पंडित जी ने क्या किया, उस चादर को सीधे सर पे ओढ़ा और उस प्लेट के ऊपर रखा और अंदर घपाघप खा लिया, और फिर बाद में खाली प्लेट अपने शिष्य को देता है, ये ले लो। तो इन्होंने कहा, अरे तुम्हारे गुरुजी कैसे सब कैसा गुरुजी, कोई किसी को पूछा नहीं कुछ नहीं, सब ऐसी तो सब खा लिया। तो बड़ा क्रोधित होकर चला गया। तो इन्होंने पूछा पंडित ने शिष्य को, अच्छा क्या विचार था उसका? बोला बड़े क्रोधित हुए। बोला अच्छा ठीक है, ऐसा जीना कभी मत, इस प्रकार मत जीना। बोला ठीक है। फिर दूसरा व्यक्ति आया, तो दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने फल फ्रूट दिया और इन्होंने उनसे पूछताछ करने लगे, कहाँ से आए, कब, कहाँ, कितने दिन रहेंगे, ऐसे बोल बोल के एक एक वस्तु फेंक रहा था, फेंकता जा रहा था। तो ये देखकर बड़ा गुस्सा आने लगे, इतना मेहनत से बटोर के लाया और ये यहां पर फेंक रहा है। तब इन्होंने फिर बाद में उससे बातचीत करने के बाद इन्होंने उसके शिष्य को कहा, तुम्हारा गुरु जी को तो कुछ अकल है ही नहीं, देखेंगे कभी भविष्य में आना होगा तो आऊंगा, तो नहीं आऊंगा, सब सामान ही फेंक दिया मेरा, वो भी चला गया। तो उन्होंने पूछा अपने शिष्य को, क्या है रिजल्ट क्या है? तो बोला ये भी बड़े क्रोधित हुए। तो बोला ऐसे भी कभी मत जीना। फिर तीसरा व्यक्ति आया, तो तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी बहुत सारे सामान लाए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ उनको दिया, कुछ बगल वाले को दिया, सब दिया, फिर खाया और फिर बातचीत किया और चला गया। तो ये कहने लगा, तुम्हारा गुरुजी कितना अच्छा है। तो इन्होंने पूछा, क्या बोला उन्होंने? बोला आपसे बड़े खुश है। तो बोला ऐसे जीना। तो पहला है भोगी, जो कि जो कुछ मिलता है सब अपने लिए, तो वैसा नहीं जीना, यानी कि कर्मी। दूसरा है ज्ञानी, यानी कि भौतिक संसार दुखाले है, चलो त्याग दो, केवल इसमें दोष ही दोष है, कुछ मत देखो, सब त्याग दो, तो वो भी नहीं जीना है। तीसरा है भक्त, जो कि जो वस्तु भगवान का है, भगवान को ही समर्पण कर उनकी पूजा करना है, सर्व उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जो वस्तु भगवान से निकली है, ये सारी वस्तु भगवान की है, तो इन इस वस्तुओं को जब भगवान को अर्पण करते हैं तो व्यक्ति समस्त प्रकार के कष्ट से छूट जाता है। इसलिए गंगा की पूजा, गंगा को लेकर गंगा में अर्पण करना ही गंगा की पूजा है। जो वस्तु भगवान से निकलती है वो वस्तु भगवान को अर्पण करना ही वास्तविक पूजा है। जब उस वस्तुओं को जब हम अपने लिए लेते हैं तब दोष देखना है, उस समय हमें दोष देखना है कि नहीं ये गलत है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।